ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आज तो आपको बहुत सारी लॉटरियां लग रही है, मजा आ रहा है ना? ये खुशी के मारे थोड़ा सा तालियां बजा दो। मैंने कहा एक तो हमने देखा दादी जी के कारण लोग रिजर्वेशन में भाग दौड़ करके पहुंच गए, और बाबा ने आपको पहले से ही निमंत्रण दिया। कमाल है ना? और प्रोग्राम के कारण हमारी शिवानी दीदी भी यहाँ आई, तो उनको वो बोल दिया तो वो भी तैयार हो गए। तो विशेष भाग्यशाली ग्रुप है ये, है ना? तो थोड़ा अपने अपने तब तब वाह, कितना भाग्यशाली, वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपको पता है कि जो परमात्मा ने आपको शरीर दिया है, जो रथ दिया है, या हम अपनी भाषा में उसको कार भी बोलते हैं ना, है ना? तो इस कार की कीमत कितनी है पता है आपको? ये कार की, वैसे किसी मर्सिडीज कार या कोई कार होती है तो 1 करोड़ या 2 करोड़ या ऐसे होगी, हमारी सिंपल कार होगी तो 4-5 लाख की होगी। अमेरिका में इसका रिसर्च किया गया, ये शरीर का एक एक जो पार्ट है, नाक कान गला घसा स्वर यंत्र ये जो भी है, तो इसकी कीमत कितनी निकली? 220 करोड़। कितना? और उसमें ड्राइवर की तो कीमत ही नहीं है, ड्राइवर तो अलग ही है, लेकिन जो शरीर है उसकी 220 करोड़। तो इस शरीर का हमें संभाल करना है ना, इसको प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, हा? और उससे काम भी लो, मेडिटेशन भी अच्छा करो। तो ये मुझे कब एहसास हुआ, 2008 में मुझे कैंसर जैसी व्याधि आई, बीमारी आई, और मैंने देखा कि कैसे आदमी टूट जाता है, आप उठ भी नहीं सकते, वॉशरूम तक भी नहीं जा सकते, आपको 2 कदम चलने के लिए आपको सोचना पड़ता है इतना दूर जाना है। तो मुझे एहसास हो गया कि परमात्मा ने हमें इतनी अच्छी गाड़ी दी तो हमें उसका वैल्यू ही नहीं होता है, है ना? हम अभी सोचते हैं कि हमको वहां जाना है, अब हमारे पैर अपने आप उधर चले जाते हैं, या कहीं कुछ काम होता है वहां अपने आप के सोचते नहीं कि हमको वहां जाना है, कि इजीली हो जाता है। लेकिन जब बीमारी हुई तो मुझे पता चला कि हम उठ भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, कुछ सेवा भी नहीं कर सकते। तो मुझे याद है 2007 दिसंबर में यहाँ रामदेव बाबा आए थे, नीचे वाला हॉल है ना, इसमें 2 दिन के लिए आए थे। तो उन्होंने ऐसे बोला कि आप लोग इतना अच्छा वातावरण है, इतना सब कुछ अच्छा है, आप रोज 10-15 मिनट क्या करो, प्राणायाम करो। तो उन्होंने जानकी दादी जी ने योग कराया 4:45 बजे तक, उसके बाद वो 15 मिनट उन्होंने स्टेज पे आके सब सिखाया, तो हम तब से शुरू कर दिया। 2 मास मैंने कंटिन्यू किया, तो 2 मास के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे पेट में कुछ है, क्योंकि वे प्राणायाम आदि करने से क्या हुआ, वो जो बड़ी गांठ थी ना धीरे धीरे से छोटी होने लगी थी, और वो भी हार्ड लग रही थी, हाथ को लग रही थी। तो मैं हॉस्पिटल गया, दिखाया तो डॉक्टर तो डर ही गया, तुरंत सोनोग्राफी कराया तो वो तो एकदम डर गया, बोलते बड़े डॉक्टर को दिखाओ, गांठ है पेट में। मुझे तो हंसी आई, मैंने कहा ये तो नाभि भी खिसक गई होगी, ये कुछ ऐसे नहीं बोला। दूसरे दिन ही हमारे पास बॉम्बे से डॉक्टर मेहता आए थे और वो हमारे अच्छे दोस्त थे, कि जब खाना बिना खाते तो अपनी दोस्ती तो हो ही जाती है ना। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, तो बोला हॉस्पिटल में आ जाओ। तो मैं गया, बोला लेट जाओ इधर, उधर ही चेक किया, ऐसे किया, तो बोला तुम बॉम्बे चलो। बॉम्बे चले गए, बॉम्बे के बाद वहाँ बायोप्सी किया तो वहाँ पता चला क्या है, पॉजिटिव है, क्या है? बोलते हाँ ये पॉजिटिव है, बोला। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है ना, पॉजिटिव तो होना ही चाहिए। मुझे पता ही नहीं था कि कैंसर पॉजिटिव बना, आपको कैंसर है, मुझे जहाँ निगेटिव बना नहीं है ऐसा। तो ये भी हमको पता नहीं था कि बाबा के घर में इतने सालों से बैठे कुछ पता नहीं है। तो हमारे साथ जो भाई थे बोला पॉजिटिव माना आपको कैंसर है, आपके वो जो गांठ है ना बायोप्सी की। तो एकदम एक मिनट क्या हुआ, आंखों के आगे अंधेरा छा गया, क्योंकि बचपन से खान पान शुद्ध सब कुछ, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन हमने अपनी आंख फिर से बंद किया और बाबा से, बाबा के साथ बातें की। बाबा को कहा बाबा मैं भी आपका हूं, ये शरीर भी आपका है, अच्छा जो कुछ करना है आपको करना है, मुझे थोड़ी करना है। और कहा कि बाबा वैसे भी 22-23 साल हो गए सेवा करते करते, वैसे आदमी रिटायर हो जाता है ना, तो मैं भी रिटायर ही हो गया समझो, तो मुझे तो दोनों में फायदा नजर आ रहा है। अगर मैं आपके साथ चलता हूं मतलब शरीर छोड़ जाता हूं उसमें भी मेरा फायदा, और यहां रहता हूं यहां तो आपकी सेवा कर ही रहा हूं, तो जैसे आपको करना है आपके ऊपर, मैं तो फ्री हो गया। बाबा के साथ बातें किया, बस मैं एकदम लाइट हो गया, जो बीमारी ये सब। अब मैं सोचने लगा अब मुझे क्या करना चाहिए, अब कैंसर हो गया तो क्या बोलते, हमारे परिवार को बोलेंगे, इसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे। सबसे पहले मैंने शुरुआत किया कि मेरे साथ मेरे भाई थे, डॉक्टर को पता था और मुझे, तो मैंने कहा और किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्यों, अगर किसी को पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, क्या बोलेंगे, अरे कैंसर है, अच्छा हमारे पड़ोस में जो जिसको हुआ ना वो तो 4 मास में ही चला गया है ना, फिर डेट पूछेंगे कब तक हो सकता है, कब तक चला जाएगा, आपस में डिस्कस शुरू हो जाता है। तो हमने इधर क्या किया, लॉक कर दिया कि जो है देखेंगे, जो होगा अच्छा ही होगा ना। तो किसी को बताया नहीं, तो वो वही का वही बात हमारे रही। जब 3-4 कीमो हो गए और फिर मैं ज्ञान सरोवर में आया तो धीरे धीरे सबको पता चलने लगा, फिर हमारे परिवार से फोन आने लगा, रोना ही शुरू। तो मैं उनको बोलता क्यों रो रहे, नहीं आपकी तबीयत खराब है, मैंने किसने बोला, मैं तो ठीक हूं। तो लोग हैरान होते हैं, फिर हमने क्या सुना, मैंने आपने गलत सुना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, तो आपको मिलने आना है। मैंने कहा आप इतने सारे लोग मिलने आओगे इससे तो मैं ही आ जाऊंगा ना मिलने के लिए। हाँ ठीक है ठीक है। फिर वो लोग क्या है, एक को दूसरों दूसरों का तीसरा सबको बता दे, नहीं नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। तो वातावरण क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव एनर्जी खत्म। अभी इसके बीच में क्या हो गया कि हमारी जब मैं मधु यहाँ ज्ञान सरोवर आया तो जानकी दादी जी, गुलजा दादी जी यहीं कॉटेज में रहते थे, तो मैं जानकी दादी को मिलने गया। तो जानकी दादी को मिलने गया तो दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और क्या किया, गुलजार दादी के पास लेके गई। गुलजार दादी को कहा देखो ना मेरे भाई को क्या हो गया ऐसे। तो गुलजार दादी ने कहा कुछ नहीं, ये छोटा पेपर है ना पास कर देगा, क्या हो गया, वरदान मिल गया, ये पास कर देगा। तो मेरे अंदर तो शक्ति आ गई, पावर आ गई। ऐसे एक बार हम जब बॉम्बे में थे तो क्या जिस रूम में मैं था ना उसके बाजू वाले कमरे में ही एक अकाउंट ऑफिस बना जो बॉम्बे हॉस्पिटल है ना अपना ब्रह्मा कुमारीज का। तो दादी जी उधर आई गुलजार दादी और वहां उद्घाटन करके नेपेंसी रोड दूसरे सेंटर पे चली गई। और वहां जाने के बाद हमारा एक ज्ञान स्वरूप के आनंद भाई था, आनंद भाई थे, तो उन्होंने कहा कि दादी जी आप सुभाष भाई से मिले? बोला नहीं मुझे तो पता ही नहीं। तो दादी जी ने कहा फोन लगा दो उसको। तो दादी जी ने जो फोन लगाया और जो महाराज से बात किया तो दादी जी क्या कहते पता है? देखो ना हमसे एक भूल हो गई। दादी जी आपसे भूल नहीं, आपको पता नहीं था ना इसलिए। नहीं भूल तो भूल होती ना, मैं हॉस्पिटल में आया और आपको मिली नहीं। फिर दादी जी ने दूसरा वरदान दिया, जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ और सेवा में लग जाओ, ये दूसरा वरदान। तो देखो बड़े महान आत्माओं के बोल में कितनी ताकत होती, मैंने अनुभव किया। इस प्रकार सिलसिला एक कि वो दो तीन चार पांच चलता रहा, 21 दिन के बाद दूसरा चलता है ना। तो मैंने एक चीज इसमें फायदा कैसे लिया जाए, इस बीमारी का फायदा कैसे उठाया जाए, क्या कर सकते फायदा उठाने के लिए? क्या कर सकते? तो मैंने जितने भी जो मेरे पेंडिंग काम थे, क्योंकि ज्ञान सरोवर शुरू हो गया तो रात दिन सेवा, कॉन्फ्रेंस, मिनिस्टर आ रहा है, सीएम आ रहा है, पीएम आ रहा है, तो मैंने सोचा था कि मैं एक बार जगदीश भाई जी जो लिटरेचर लिखा है वो पढूं। फिर हम जो बाबा के पास जाते ड्रिल करते, यहां से परम धाम जाना वापिस आना, सुनते थे लेकिन कभी करते नहीं थे। तो मैं हजारों बार करता था यहां से धीरे धीरे जाने का वापिस आने का, ये चलता रहा। फिर मैंने कुछ अपने वीडियोस बाबा के आवेक्त बाबा के वीडियो, और उस समय शायद वो महाभारत या रामायण चल रहा था वो भी देख रहा था। तो पूरा सुबह से शाम तक हमारी दिनचर्या एकदम मस्त रहती थी और पता भी नहीं चलता था कैसे। और हॉस्पिटल में रह के भी हमने देखा कि जब हमारे पास डॉक्टर आते थे कई बार मैं क्या करता एकदम फ्रेश बैठ के मुरली बिल्ली पढ़ता था, तो कभी नए डॉक्टर आते थे तो एकदम गर्म हो जाते थे, यहां क्यों बैठे हो, ये तो पेशेंट की जगह है। तो कभी नर्स आती थी, आपको इतना भी समझ नहीं, ये तो पेशेंट की जगह है। तो जब बाद में पता चलता है कि आपका नाम क्या पूछती थी, मैंने कहा सुभाष, अच्छा सॉरी 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 करते थे, तो उनको पता ही नहीं चलता था। फिर वो बाजू वाले रूम्स में जाके बोलते थे देखो उस कमरे में कैसे पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, लेकिन देखो खुश कितना रहता है। तो बाबा को हमने ये बोला कि हमने इतने सालों से मेडिटेशन किया, तपस्या किया, इतना सब कुछ किया, तो ये अभी पेपर है हमारा, एग्जाम है, अभी ये एग्जाम को हमें पास करना है ना। अगर मैं सबको बोला मेरे को बहुत दर्द आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो तो वातावरण में चला जाता है ना। कई बार क्या होता है, इतना दर्द होता था, इतना मतलब सहन नहीं कर सकते थे। तो ऐसे मैं लेट जाता था चुपचाप, मेरे साथ भाई भी होता था लेकिन मैं चुपचाप लेट जाता था। तो मैंने एक बार बहुत दर्द था, बाबा से बात किया, बाबा शरीर तो कुछ काम का नहीं, ना कुछ कर सकता है ना कुछ सेवा कर सकता है, सेवा ले रहा है, ले चलो ना मुझे, अभी क्या करना है, इतनी सेवा तो हो गई। तो बाबा बोलता है अच्छा बाप को भी सिखाने लगे हो क्या करना है करके। तो हम चुप हो गए, बाबा ने इतना मतलब। और मैंने देखा जब हम कोई चीज को हम पॉजिटिवली देखते, कुछ उसकी विशेषता देखते, फायदा उठाते, तो क्या हुआ, यहां हमारा परिवार बड़े 50-60 लोग ज्ञान में है, तो सबका दिल होता है कि हम भी सेवा करने जाए। तो हमारे पहले दो भाई की लड़कियां आई, एक बहन की एक भाई की आई, मेरे वो फीका खाना ऐसे थोड़ा बनाती थी, फिर आर्ट गैलरी में सेवा करती थी। एक मास, दो मास, तीन मास हो गया, फिर चौथे मास कन्याओं की भट्टी थी उसमें चली गई, आई तो मतलब लास्ट में मिलने के लिए आई थी, इस बार शादी वादी करेंगे, लेकिन वो आई दोनों के दोनों गई बॉम्बे ब्रह्मा कुमारी बन के गई। उसके बाद दो और आई वो भी ब्रह्मा कुमारी बनी, तो चार तो ब्रह्मा कुमारी बनी। देखो कितना फायदा होता है। उसके बाद क्या, एक दिन ऐसे मैं अनुभव सुना रहा था तो सुरेश ओबेरॉय आए थे, तो अरे तेरे को कुछ नहीं होने वाला है, तूने इतनी सेवा की है, ऐसा कॉन्फिडेंस। तो मैं एक दिन ऐसे शिवानी बहन को कुछ मेरे अनुभव सुना रहा था ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं सुनाओ, इसको लिखो लिखो और ज्ञानामृत में डालो। मैं जो तो हंसी आई, मैंने कहा ये क्या बीमारी लिखने जैसा होता है क्या? लेकिन मेरे को आदत है थोड़ा थोड़ा जो भी लिखे ना उसको लिख के रखता डायरी में, तो वो सारा थोड़ा थोड़ा जोड़ दिया। हमारे पास एक मीडिया वाला भाई उसको दे दिया, तो उसने थोड़ा श्रृंगार उसको किया और ज्ञानामृत में भेजा, तो उनको इतना वो अच्छा लगा, उन्होंने तुरंत उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन वर्ल्ड रिन्यूअल में सारी दुनिया में चला गया, फिर मराठी गुजराती सारी भाषा में ट्रांसलेशन हो गया। उसके बाद ई टीवी में 13 एपिसोड उन्होंने रिकॉर्डिंग किया, फिर पीस ऑफ माइंड में। तो बाबा को मैं बोलता था बाबा हम टीवी तो देखते लेकिन कि टीवी में हम कभी आएंगे कभी सोचा नहीं था। तो ये तो बाबा आपने तो कमाल करे, आपने मुझे बीमारी थोड़ी दी, आपने तो गिफ्ट दिया ही है, इतनी सारी सेवाएं हो रही है। लेकिन एक जो मुझे अनुभव हुआ उस समय, वो जीवन में मेरे यादगार, मैं अपने कमरे में बैठा था और बाबा डायमंड हॉल में आए थे, मतलब अभी गीत चल ही रहा था, मैं एफएम रेडियो में सुन रहा था। हमारे कमरे में एक ट्रांसलाइट का चित्र है, देख रहा था। जस्ट अभी मुरली शुरू होने वाली ही थी तो बाबा को मैंने कहा बाबा आप 25,000 लोगों को मुरली सुनाओगे और मैं यहाँ अकेला बैठा हूं, और मेरी आंखों से पानी आने लगा, दर दर पानी आने लगा। तो इतने में मैं क्या देखता हूं, वो ट्रांसलेट से बाबा धीरे 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 मेरे तरफ आए, मेरे बाजू में बैठे, और जो पूरी मुरली 1.25 घंटा बाबा मुझे मुरली सुनाते गए। और उसके बाद मेरे अंदर इतना एनर्जी आई, इतनी शक्ति आई, मैं उठ के खड़ा हो गया और 3 मंजिल नीचे उतर के डाइनिंग में चक्कर लगा रहा था। सब लोग देख रहे थे, अरे इसको क्या होगा, ये इधर क्यों, आप बीमार हो, यहाँ क्यों घूम रहे हो? लेकिन मेरे को इतना अंदर खुशी, इतना ताकत, अब मैं किसको क्या बोलूं, बाबा ने मुझे मुरली सुनाई, लेकिन अंदर इतना पावर तैयार हो गया था। तो मैंने ये देखा, अनुभव किया कि भगवान के ऊपर कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए। हम लोग बोलते ना, अरे देखो हम इतने सालों से ज्ञान में, लेकिन पता नहीं बाबा ने मेरे पर ही क्यों ये डाल दिया, मेरे को ही बीमार क्यों कर दिया, इतनी सारी दुनिया में लोग है और मेरे पर ही क्यों। अरे मेरा तो हिसाब किताब है, मुझे मेरा हिसाब किताब जल्दी चुक्त करना है ना, हिसाब किताब चुक्त करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो कभी भी ना डॉक्टर के ऊपर, ना परमात्मा के ऊपर, ना दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो भी परिस्थिति आए उसमें से हम धीरे 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 हमें निकलना है। उस समय हमारी माताजी भी सेवा में आती थी, उस समय 95 की उम्र थी उनकी, तो चढ़ भी नहीं सकती थी, तो भी 3 मंजिल चढ़ के सीढ़ी पकड़ आती थी और बोलती नहीं मैं तेरा मालिश करूंगी। मैंने कहा आप क्या मालिश करेगी, क्योंकि जब कीमो होता है ना तो कोई हाथ भी नहीं ला सकता, मतलब हाथ लगने से दर्द होता है इतना सारा ऐसे। तो फिर भी वो मानते नहीं थे, मैं खटिया पे बैठ के धीरे धीरे, तो जो नसें सुकड़ गई थी ना वो धीरे धीरे एक्टिव हो जाती थी। तो माँ तो माँ होती ना, प्यार उसका इतना। तो ऐसे मैंने देखा कि कई बार जब हॉस्पिटल में भी मैं एकदम डीप साइलेंस में चला जाता था ना, तो हमारे भाई को चिंता होती थी, उसको लगता है हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे, क्या हुआ? तो मुझे ऐसा हिला के देखता था, ये जिंदा भी है या चला गया करके। तो उस समय में जो अभ्यास किए, एक तो अभ्यास किया कि यहां से आत्मा धीरे 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 परम धाम जा रही, और परम धाम से धीरे 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 फिर ब्रुकुटी में आके बैठ रही। तो ये मेरे अभ्यास हजारों बार किया। और दूसरा एक अभ्यास मैंने बहुत अच्छा किया, वो था कि बाबा मेरे ऊपर है और बाबा से ब्लू वायलेट कलर की रेज आ रही मेरे या ब्रेन में, और धीरे धीरे पूरे धीरे शीर्ष छाती से होते होते पूरा शरीर ब्लू वायलेट होता है। और फिर मैं बोलता था, बाबा ये जो शरीर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो जल के खत्म हो रही है, और जो भी जर्म्स है इसके अंदर कैंसर के वो भी जल के खत्म हो रहे। ऐसे में बाबा के साथ बातें करता था, और बाबा जैसे कि फिर ऐसा अनुभव करता कि शरीर एकदम निरोगी हो गया है, कंचन का आया हो गया, और साथ साथ आत्मा भी पावरफुल हो गई। तो लास्ट में जब हम योग करेंगे तो वो आपको सुना कमेंट्री कराएंगे। अभी वर्तमान समय में क्या करता हूं, दवाई कुछ नहीं है, सिर्फ ज्यादा करके खुश रहता हूं। क्या करते हैं? खुश रहना है, वॉकिंग, प्राणायाम, और सुबह के नाश्ते में मैं व्हीट ग्रास माना गेहूं होता है ना, गेहूं, वो गेहूं का जवारा पीता हूं। तो इस प्रकार से एकदम परफेक्ट। और मुझे तो कई बार ऐसा अनुभव होता है कि मैं पहले था ना उससे भी ज्यादा एक्टिव हो गया हूं। तो ये बाबा की कमाल है। और कभी अपने संकल्प क्या होगा, हाँ इतने देश विदेश के लोग आते, ये होते, तो विदेश कैसा होता है क्या, सब बुलाते भी थे, तो वो संकल्प थोड़ा सा बचा था कोने में। अभी तो शरीर छोड़ना है, अभी कहाँ जाएंगे, पूरा ही हो गया ना। जैसे हम ठीक हो गए तो हमारे धीरे धीरे प्रोग्राम शुरू हो गए, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिर यूरोप, लंदन आदि, फिर 2017 में अमेरिका। और जिधर भी जाते सबको पता चल गया कि ये अनुभव की बात। तो मैं जो कुछ दूसरा ज्ञान सुनाने शुरू करता हूँ ना, तो बीच में खड़ा होके कोई ना कोई, नहीं नहीं हमको दूसरा कुछ नहीं सुनना, आपका अनुभव सुनाओ। तो मेरे तो क्या है, मेरे को कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, जो है वो सुनाते जाओ। तो जब मैं कनाडा में वैंकूवर में गया एक जगह पे, तो मैं ऐसा अनुभव सुना रहा था। इतने में एक माता जी खड़ी हुई और आगे आई, बोलते आपको किसने बुलाया इधर? मैंने कहा किसने? मैंने कहा, बोला मैंने आपको बुलाया इधर। मैंने कहा कैसे? बोला आपका मैंने पीस ऑफ माइंड में सुना था, तब से मैं बाबा को रोज अमृत वेला बोलती, ये भाई से मुझे मिलना है, ये भाई से मुझे मिलना है, और आज मेरे सामने। देखो माताओं के अंदर कितना पावर होता है, कितनी शक्ति होती, ना मुझे पता है ना कुछ। देखो बाबा ने उसकी दिल कैसी पूरी किया, ये बाबा की मिरेकल है, ये बाबा की कमाल है। हम देख रहे कि आज आप इतने खुश नजर आ रहे, आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आपको बहुत कुछ प्राप्ति हुई है, बहुत कुछ मिल रहा है। और सबसे पहले तो इसलिए भाग्यशाली है, देखो कोरोना हुआ लेकिन फायदा किसको हो रहा है? हाँ, अगर कोरोना नहीं होता तो आप यहां होते? पहली बार यहां कौन आए, ज्ञान स्वरूप में रहने का मौका मिला है, देखो पहली बार, तो अपने लिए ताली बजा दो। क्योंकि हमने इतने सालों से देखा, एक तो विदेशी लोग आते हैं और दूसरे विंग के प्रोग्राम चलते हैं, और किसी को अगर कोई गाइड आता है उसको चांस मिलता है। लेकिन यही सब कई बार बोलते थे हमको, हमको यहाँ कभी हम रहे नहीं, हम बाबा की सेवा किया है, हमने बाबा के लिए ज्ञान स्वरूप के लिए एक एक रुपये डाला है, लेकिन हमको रहने को किसी ने नहीं दिया। और आज देखो कोरोना हमें वरदान बन के आया है, आया ना। तो कोई भी चीज को हमें अपने जीवन में क्या करना है, पॉजिटिव लेना है और आंख खुलते ही बाबा को लाख लाख शुक्रिया बाबा लाख, क्योंकि मेरी गाड़ी की कीमत कितनी है 220 करोड़। अभी इसका भी हमें संभाल भी करना है ना भाई। देखो हमारे पास किसी की गाड़ी होती है ना, थोड़ा खरोच भी पड़े, अरे क्यों खरोच, क्या यार कितना बोलते, और ये गाड़ी इतनी भगवान ने दिया है और उसके अंदर आत्मा तो देखो उसका तो हम कीमत ही भी नहीं कर सकते। तो इतनी अच्छी चीज परमात्मा ने हम दी, उसको संभाल भी करो। अगर हमारे पास मर्सिडीज गाड़ी है, हम रोज उसको पोंछ के रखेंगे और गैरेज से निकालेंगे ही नहीं, फायदा है क्या? गाड़ी अच्छी भी होनी चाहिए, एक्टिव भी होनी चाहिए और उसमें साथ फराटेदार घूमना भी चाहिए, मतलब ये शरीर के द्वारा सेवा भी लेनी है, ये नहीं कि सिर्फ हो गया ये किया, नहीं। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन में सदा खुश रहना है। हमारी गुलजार दादी बहुत अच्छी तरह से बताती थी कि आप थोड़ा मुस्कुराओ ना, इसमें कोई पैसा थोड़ी पड़ता है, आप मुस्कुराएंगे तो सामने वाला भी। तो सबसे पहले हम शुरू करें ना, है ना, हमारे से शुरुआत करें। तो कभी भी एक ध्यान रखना, ब्लेम नहीं करना किसी पर, उसके कारण हुआ उसके कारण, और जो परिस्थिति आई है उसको क्या करना है, फायदा कैसे, सबसे पहले क्या बोला, एक्सेप्ट, पहले स्वीकार करो, हाँ मुझे ये हो गया है ठीक है, अब उससे मुझे क्या करना है, उससे मुझे फायदा क्या उठाना है। हाँ अब बोलते ना चाकू है तो चाकू से खरबूजा भी टांग कर दे, हाथ भी काट सकते सब, मतलब हमें उसे लेना क्या है वो सीखना है। तो हमें आज बहुत खुशी हुई आप सबको मिल के, और एक मैं गुलजार दादी की बात सुनाता हूँ कि एक बार मैं और मेरे साथ एक भाई थे, हम गए शांतिवन दादी से मिलने के लिए। दादी तो माँ जैसे ना, हम उनके रूम में जाकर बैठ जाते, तो वहाँ बैठे थे तो दादी जी ने कहा कि अच्छा क्या चल रहा है ऊपर, तो हमने कहा विंग के प्रोग्राम है, इतने लोग आए इस प्रकार से ऐसे ऐसे। फिर दादी ने कहा अच्छा बैठो मैं आती हूँ, तो दादी उठ के चली गई। दादी 2 मिनट के बाद आती है और दादी के हाथ में क्या था पता है, 2 प्लेट, उसमें नमकीन मीठा ये वो। दादी तो एकदम हम लोग के मुख से ने, दादी क्या करे, तो दादी बोलती अच्छा मैं जब ज्ञान सरोवर में आती हूं तो कितनी खातरी करते हो, मैं भी करूंगी। देखो कितनी महान आत्मा, कितनी महान विभूति, लेकिन उनके अंदर इतनी निर्माणता। हमें सौभाग्य मिला दादियों के साथ रहने का। लास्ट में भी दादी के साथ हम लोग घूमने जाते थे, दादी वॉकिंग करने, एक बार हम पीस पार्क गए थे तो दादी के साथ, तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो 10-12 लोग थे, तो 10-12 लोग खेल रहे थे और मैं और गुलजार दादी दोनों बैठे एक दूसरे को बातें करे, बातें भी क्या करेंगे, दादी के साथ तो ऐसी शक्ति आती है। तो मैंने देखा जिस एरिया में हम बैठे थे ना, तो उस एरिया में एक कुमार वहां से देख रहा था दूर से, वहां से वो जब जा रहा था फिर बोला अपनी दीदी को, बोला दीदी आपको पता है जिस गार्डन में दादी बैठी थी ना उधर में खड़ा था। मैं तो इतना अंदर लगा, देखो जिसके लिए तो खड़ा है उधर कोने में, तभी उसको कितनी खुशी हो रही और हम तो दादी के साथ, हम कितने भाग्यशाली है। तो दादी हमको बोलती थी ये कौन है, तो दादी बोलती ये खाना खिलाने वाला है, तो क्योंकि दादी को हम खाना भी खिलाते, डाइनिंग में आते थे वहां भी, तो हम जब दादी है ना एक ही रोटी खाती थी, दूसरी रोटी नहीं खाती थी, तो हम लोग दादी को खाना बैठते थे तो नीलू बहन थी वो, तो अपने हाथों से जैसे ना एक बच्चे को खिलाती है ऐसे खिलाती थी, तो हम लोग सामने है ना एक टीवी में कार्टून या शेर आदि है ना वैसे, तो दादी बोलती दादी ये क्या, तो दादी बोले शेर है ना ये, तो तब तक हम रोटी चेंज करते थे उधर से, तो दादी को हम दो रोटी खिलाते ऐसे प्यार प्यार में। तो दादी बोलती, नीलू रोटी खत्म नहीं क्यों हो रही है? तो इतना मतलब इनोसेंट दादी, इतना मतलब प्यारी थी। और दादी जब हम तो छोटे इतने, दादी आप कैसे हो? मैंने दादी मतलब हम आप करके बुलाती थी। तो कितनी सीखने की बातें थी उनमें। तो आज दादी हमारे बीच में नहीं, लेकिन दादी सबके दिलों पे राज कर रही है, सबके दिल में दादी बैठी है ना। तो दादी ने जो भी हमें शिक्षाएं दी है वो हमें साथ रखना है और उसका आचरण करना है और आगे आगे बढ़ते जाना है। तो अभी हम 3 मिनट जो आपको अभ्यास बताया ना वो करेंगे, सिंपल सा कि यहाँ बाबा है बहुत नजदीक और उसकी रेज मेरे ऊपर आ रही है, मैं बताता जाऊंगा वैसे वैसे करते रहना। सब अलर्ट होके बैठो, मेरे सिर के ऊपर बहुत करीब, बहुत पावरफुल शिव बाबा है और वहां से एक बहुत ही पावरफुल रेज निकल रही है, ब्लू वायलेट कलर है। मेरे सिर से होते हुए धीरे धीरे ब्रेन ब्लू वायलेट होता जा रहा है, चेहरा गला छाती से होते हुए धीरे धीरे पूरा शरीर एकदम नीचे टांगे टांगों तक एकदम ब्लू वायलेट। अब पूरा शरीर मेरा ब्लू वायलेट हो गया है और उसमें जो नेगेटिव एनर्जी है खत्म होती जा रही है। जो भी बीमारी है हमारे शरीर में छोटी मोटी वो सब खत्म होती जा रही है। जिस भी बीमारी के जर्म्स है वो जल के भस्म हो रहे हैं। अब मेरा शरीर एकदम पावरफुल शक्तिशाली बनता जा रहा है। बाबा मुझे कंटिन्यू शक्ति देता जा रहा है। अब शरीर के अंदर हमारी आत्मा भी एकदम पावरफुल शक्तिशाली बनती जा रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली पावरफुल, मेरे शरीर में कोई भी निगेटिव एनर्जी नहीं है, मेरे आत्मा में कोई भी निगेटिव एनर्जी नहीं है। मेरे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, एकदम निरोगी कंचन काया। मैं आत्मा आत्मा और शरीर दोनों पावरफुल हो चुकी हूं। बाबा शुक्रिया, बाबा तेरा लाख लाख शुक्रिया। इस प्रकार जब भी आप योग में बैठते हैं ये अभ्यास अवश्य करना, तो आप सदा ही पावरफुल बने रहेंगे। ओम शांति।